संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
चार पुरुषार्थों की चर्चा पाठ योजना तो इतनी सफल और सुंदर योजना है कि जिनवाणी माता को हमारे कंठ में बसाती है। पहले तो प्रसिद्ध ही था कि कंठ की विद्या और अंत का दाम और समय पड़े पर आवे काम। कोई भी आदमी 15-50 रुपए के पुरस्कार के लोभ में ये काम नहीं करता है और लोभ में करने वाले कर भी नहीं सकते हैं, तो जिनवाणी के प्रति श्रद्धा और आस्था है उसकी वजह से ही ये सब लोग तैयार करते हैं। इस पुरस्कार के बहाने तो एक वातावरण बनता है, पर जब हम सुनते हैं कि इतने लोगों ने इतना इतना तैयार किया है तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। आज तो हमारे आंख कान काम करते हैं, पर हम सत समागम का लाभ भी ले लेते हैं और जिनवाणी भी पढ़ सकते हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आंख कान नाक बंद करना बंद कर दें तो उस समय हमारे कंठ में जो विद्या होगी वो कंठ में ही नहीं है बल्कि हमारे धारणा ज्ञान में है। वो जब कंठ रुक जाएगा ना, तब भी वो हमारे स्मृति पथ में आकर हमें बहुत बड़ा सहारा देगी। अभी जो राजमल जी साहब को आप सुन रहे थे, आप जानते हैं उनकी उम्र क्या है? 77 वर्ष, 77, जिसमें सब लोग भूल जाते हैं। पूरे प्रवचन सार की गाथाएं श्लोकों सहित और अर्थ सहित उन्हें आदो पंत याद है। अब जानते हैं ना, ये आचार्य विमल सागर चक्रवर्ती हुए ना, उनके क्लास फेलो थे, मैं ना विद्यालय में पढ़ते थे, जो आचार्य विमल सागर गुजरे ना, और ये वो पंडलाल बहादुर शास्त्री जो थे दिगंबर जैन समाज के बड़े विद्वान, वो भी इनके क्लास फेलो थे, एक क्लास में पढ़ते थे मेरे नाम विद्यालय में। पर मैं जब अशोक नगर में रहता था तो 9.25 वर्ष तक हम लोग ऐसे मित्र बन के रहे कि दिन में 4-6 घंटे रोजाना एक साथ रहना ही, और एक कप चाय एक साथ में पीना ही, चाहे उनके घर पर चाहे मेरे घर पर, बाजार में नहीं। तो हमारा बहुत पुराना 9 वर्ष पुराना का दोस्ताना है। तो आज जब मैंने सुना कि भाई वो भी लाइन में लगे हैं इस साल जी, जो उस वक्त से भी निरंतर तत्व के अभ्यासी रहे हैं। मुझे याद है कि उनके लड़के की बारात जानी थी और मेरा व्याख्यान हो रहा था, 10 बजे की गाड़ी से बारात जानी थी, पर आज से 9 बजे तक मेरे व्याख्यान प्रवचन में वो बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे थे। 10 बजे गाड़ी में बारात रवाना होनी थी क्या? तो इतनी पुरानी है, तो मैं आपको 40 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि वो अशोक नगर छोड़े ही मुझे 32 साल तो हो गए हैं। इसलिए ऐसे बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक के गले में ये जिनवाणी माता को बसाने का ये काम सचमुच में अद्भुत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए तो उतनी कम है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि इतना पूरा 100-100 गाथाएं याद करी और 51 रुपया, तो हंसी आती है, क्या कह रही है, कौन से जमाने में रह रहे अस्पताल जी। लेकिन अस्पताल जी ये सारा काम स्वयं अपनी तरफ से ही करते हैं, भ्रमितारियों के कोई कल कारखाने तो चलते नहीं है। इन्होंने जो शुरू किया ना, अपने गांव के पैसों से ही शुरू किया, और उसके बाद में तो बहुत से लोग उनको सहयोग भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना। लेकिन वो जो बहुत अद्भुत और महान कार्य है, बड़ी लगन से सारे देश में वो करते ही रहते हैं। अकेले यहाँ नहीं, हमारे सारे विद्यार्थियों को बुला बुला कर उनसे कराते रहते हैं। तो जिस गांव में जाते हैं उस गांव में तैयार कराते हैं, महिलाओं को तैयार कराते हैं। आपने देखा कितनी बुद्धि बुद्धि महाराष्ट्र की महिलाएं यहाँ आकर के वो पुरस्कार ले रही थी। इस तरह उनने हजारों लोगों के कंठ में जिनवाणी बसा दी है। ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। अपनी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय की चल रही है और आज मेरे ख्याल से कौन सा 13वां दिन है, 13वां व्याख्यान है, 12 व्याख्यान इस पर हो चुके हैं। तो बहुत कुछ माल तो निकल ही गया है, बता कुछ थोड़ा माल है उसकी बात करनी है। कलपन ने एक बात कही थी अंत अंत में याद हो तो, एक क्रमबद्ध पर्याय व्यवस्थापकों की समझ में नहीं आएगी। मैंने आज दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक क्रमबद्ध पर्याय उतावलियों की समझ में नहीं आती है। चमन भाई, इनकी समझ में नहीं आती है? जो उतावलिया लोग हैं ना, उनकी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? जिनको किसी काम की बहुत जल्दी है, एक काम मुझे जल्दी होना चाहिए, उसको ये बात कैसे पसंद आने लगी कि भाई जल्दी नहीं होगा, समय पे होगा। क्यों? जब समय होगा कोई कार्य का, तभी कार्य होगा। उसके एक समय पहले नहीं होगा, ये बात जल्दबाजों की समझ में कैसे आने वाली है? इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। आप किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर जाकर खड़ा होकर देख लो, यदि लोगों का उतावलापन आपको देखना है तो, वहां एक लाल बत्ती लगी है। काय के लिए लगाई गवर्नमेंट ने वो? कि जब लाल बत्ती हो तो आप सड़क पार नहीं करें, अन्यथा किसी ट्रक के नीचे आकर आपका मोक्ष हो सकता है। फिर भी हम क्या करते हैं बोलो? जहां हमें जाना है वहां कोई ऐसा बहुत जरूरी काम नहीं है, घर पर ही पहुंचना है, फिर आराम से सोना है, उठना है, बैठना है, 5 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोई बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। फिर भी लाल बत्ती है तो हम यहां वहां देखकर कि कोई पुलिस वाला तो नहीं है, क्यों? अब चुपचाप लाल बत्ती में ही निकल जाते हैं। तो क्या किया था गवर्नमेंट ने? कहीं पुलिस वाला खड़ा किया। विदेशों में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लाल बत्ती है तो लाल बत्ती से ही काम हो जाता है। लेकिन हमारा ये देश महान है ना, क्योंकि बत्तियों बत्तियों से कोई समझने वाला नहीं है। जरा सी जब लाल बत्ती है हमें रोक दे, हम साधारण आदमी है, तो एक पुलिस वाला खड़ा है। ये गवर्नमेंट उस पुलिस वाले को कुछ तनख्वाह देती होगी, 2000-4000 रुपए महीना देती होगी कि नहीं? काय के लिए दे रही हो? तुम्हारी जान बचाने के लिए। कि कोई आदमी किसी ट्रक के नीचे आकर कुचल के न मर जाए, इसमें भी गवर्नमेंट का कोई स्वार्थ होगा? ये जो खर्चा है वो प्योर आपकी जान बचाने के लिए है। चलिए लाल बत्ती लगाई, उसमें भी थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही होगा। फिर पुलिस वाला खड़ा किया, और फिर भी वहां पुलिस वाला खड़ा है, लाल बत्ती है, और हम यहां वहां देखते हैं, और पुलिस वाले की निगाह दूसरी तरफ है। उतावलिया लोगों को देखना हो तो देखो, फिर पुलिस वाला पकड़ लेता। क्यों? तो 10-20 रुपया देकर। क्यों केशव जी, कितने लगते हैं आजकल? 100 रुपये से कम नहीं लगते हैं, इन्हें अनुभव है। ये भी एक उतावलिया दिखते हैं। साहब, क्या है ये हिंदुस्तान कि जहां सड़क पर चलने के लिए भी हमें 100 रुपया घूस देना पड़ती है? क्यों बोलो अटल जी? तो काय के लिए घूस? गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए है तुम्हारे लिए किया है, गवर्नमेंट का इसमें क्या फायदा था? यानी तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी जान चली जाए इस कीमत पर कर रहे, उसके बदले में क्या मिलने वाला है पादनी जी? कुछ नहीं। और फिर उस पुलिस वाले को घूस लेना सिखा रहे, क्यों? उसे भ्रष्ट कर रहे हो। इतने अपराध तुम कर रहे हो, और सिर्फ किस लिए? कि 2 मिनट पहले घर पहुंच जाए, जबकि 12 घंटा आपको घर पे ही जाके अब रहना है, और कोई काम नहीं। जान की जोखिम लेकर के इस जीव के स्वभाव में कितना उतावलापन है, इसे सिद्ध होता क्या नहीं होता? और ऐसे उतावलियों को हम ये कहेंगे काम तो समय पे ही होगा, तुम 1000 प्रयत्न करो, कोई उपाय करो, तो काल लब्धि आए बिना कार्य होगा नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये बात मानने के लिए तैयार। तो हमारी प्रकृति जरा अंदर अध्ययन करके देखो, कभी ऐसे क्या है, कोई काम हो, मां बीमार हो, दवाई लेने जाना हो, एक एक मिनट की कीमत हो, क्यों? तो समझ में आता है कि भाई आपने जोखिम लेके के भी गए। यानी आप समझिए कि काम समय पर हो इसके विरुद्ध आपका मन में कितना बड़ा विद्रोह है, कि जान की बाजी लगा करके भी इसको तोड़ना चाहते हैं आप इस कानून को लोक में। तो जब आपका नंबर आए तब आप जाइए, क्यों? कहीं रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन लगानी हो तो कहीं भी, तो आप लाइन को भंग करना चाहते, आपका नंबर आए तब आप जाए, बोले उसके प्रति आप कितना ईमानदार हैं। अमेरिका जैसे देशों में वहां भी लाइनें लगती हैं, कोई भी आदमी बिल्कुल कभी भी लाइन का उल्लंघन नहीं करेगा, क्यों सुमन भाई? बिल्कुल। अपने हिंदुस्तानी टूरिस्ट वहां जाते हैं ना तो धक्का मुक्की करके दो के पीछे आएंगे, दो के और बढ़ जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते ही है। तो वो वहां के लोग जानते हैं कि जो इधर जो है ना ऐसी चमड़ी वाले, जो ऐसा करेंगे ही तो उन्हें देख देख के भी हंसते हैं और वो करने देते हैं। तो हमें एक आध आदमी तो आपको टोकेगा, बाकी वे आपस में एक दूसरे को देखकर ऐसे हंसेंगे तो देखो कहीं का बंदर आ गया है, मूर्ख क्या करें, छोड़ो इसको, वो कभी उल्लंघन नहीं करेंगे कुछ नहीं। वो अभी कोई कहेगा भी ना आपके यहां आप जाएगा दीदी ने आपके बिल्कुल लाइन से आएंगे बिना किसी के कहने के लिए। और यहां तो लाइन में खड़े करने के लिए पुलिस को डंडा लेके खड़ा करना पड़ता है, तो पुलिस डंडा मारती रहती है, तो इसमें अपने चार आदमी को धक्का मार के आने निकल जाते हैं। बस में बैठना हो, ट्रेन में बैठना हो, प्लेन में बैठना हो, तो कोई भी आदमी बिना लाइन से जाएगा ही नहीं। तो हमारा कोई भी आदमी लाइन पर चलना सीखा ही नहीं, क्योंकि हमने तो वो पढ़ा है ना, लीक लीक छोड़ कर चलते हैं सागर सिंह सपूत, लीक लीक पर चलते हैं कायर और कपूत, और लीक छोड़ कर चलते हैं सागर सिंह सपूत। हम तो सिंह है, कायर है, सपूत है, तो ऐसे सपूतों के चाहे वो जिनवाणी माता के सच्चे सपूतों क्यों ना हावड़ा जी के, तो उनकी समझ में क्रमत पर्याय आसानी से आने वाली। अरे जगत का जो प्रणमन है, जो सहज है, उस सहजता से हम उसे स्वीकार करें ना, है ना। ये जो ये क्रमत पर्याय जो है, ये लोक का जो सहज प्रणमन है उसकी स्वीकृति का नाम है। इसमें भी वो ऐसा ही है जैसा जैसा आत्मा की अनुभूति में बताया था। क्या बताया था? कि पहले जिनवाणी के माध्यम से और गुरु के माध्यम से विकल्पात्मक श्रद्धा होती है आत्मा, और फिर अनुभूति के काल में वो निश्चय श्रद्धा होती है, निर्विकल्पक श्रद्धा होती है, निर्विकल्पक ज्ञान होता है। ऐसे ही एक क्रमबद्ध पर्याय की पहले जिनवाणी के माध्यम से और गुरुमुख के माध्यम से तर्क और युक्तियों के आश्रय से विकल्पात्मक ज्ञान में श्रद्धा होती है, और बाद में सच्ची श्रद्धा तो आत्मानुभूति के काल में ही क्रमबद्ध पर्याय की होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होती है। इसमें भी वही बात है कि हमने तो बहुत प्रयत्न किया, हमने तो बहुत कवि किताब पूरी पढ़ के रट ली, लेकिन हमारे को तो जची नहीं कि जचे कैसे। इसलिए सम्मा दर्शन से इसका डायरेक्ट संबंध है। विकल्पात्मक श्रद्धा जब तक पक्की नहीं होगी तो त्रिकाली ध्रुव के स्वरूप को जानने की बात कही थी उसने अपना बनाने की, ऐसे क्रमबद्ध पर आएगी जब विकल्पात्मक श्रद्धा सच्ची नहीं होगी तो दृष्टि पर से हटकर स्वभाव के सन्मुख आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? कि उसके माथे पर के कर्तृत्व का और अपनी पर्याय में फेरफार करने के कर्तृत्व का बोझा बना ही रहेगा। एक गुरुदेव के इंटरव्यू में ये बात लिखी जिसमें आपकी किताब में, देखो निकालो, एक गुरुदेव का इंटरव्यू है ना जी आपकी किताब में सबसे अंत में पेज नंबर 128 प्रश्न है नीचे देखो, जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर आप आत्मा का अनुभव करने का, गायक स्वभाव के सन्मुख दृष्टि करने का उपदेश क्यों देते हैं? ये नहीं है कोई दूसरा है। पेज नंबर 122 पे अभी आपने फरमाया कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होता। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होता, त्रिकाली गायक स्वभाव पर दृष्टि रखने से होगा, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की जरूरत ही क्या है? बस हम तो गायक स्वभाव का आश्रय ले लेना बस काम हो जाएगा, तो गायक स्वभाव के आश्रय से ही होगा, तो गायक स्वभाव का आश्रय हम ले लेंगे तो क्रमबद्ध का निर्णय ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर तो हमको माथा मारने की क्यों कहते हो कि आगम पढ़कर रिप्ति से गुरुमुख से क्रमबद्ध पर्याय को तुम समझने की कोशिश करो। गायक स्वभाव का आश्रय लेने से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा। तो वे कहते हो ले सकते हो तो ले लो ना, क्या क्या ले लो? गायक स्वभाव का आश्रय क्रमबद्ध पर्याय को विकल्पात्मक ज्ञान में समझे बिना यदि तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले सकते हो तो ले लो, माने ले ही नहीं सकते कहने का अर्थ है। कौन मना करता है? पर विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय पर से दृष्टि हटती कहाँ है? मुझे एक करना, मेरे माथे पे ये तेरे माथे पे कुछ नहीं है, ये बराबर अपने आप स्वयं बदलेगी, जो जैसी बदलनी है वैसी बदलेगी, जो होनी है वो ही होगी, तू ध्यान रखेगा तो वो ही होगी, नहीं रखेगा तो वो ही होगी, ऐसी दृढ़ प्रतीति नहीं आए तब तक पर्याय पर से दृष्टि हटती नहीं है, स्वभाव पर दृष्टि जाती नहीं है। ख्याल में देखो, अब मैं उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगी। आपने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करा दिए और मान लिया 12% ब्याज मिलना है, क्यों? तो साल भर में कितने 12,000 रुपए मिलेंगे 1,00,000 रुपए के हैं? तो आप बराबर रोजाना ध्यान रखोगे तो 12,000 मिलेंगे, तो ध्यान नहीं रखोगे तो शायद 11,000 मिलेंगे, ऐसा है क्यों? तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, क्यों समझ में? अरे भाई, ध्यान रखने की जहमत उठानी हो तो फिर बाजार में 3 रुपए सैकड़े भी मिलेंगे, फिर कहे को तुम 12% पे 1 रुपए सैकड़े पे जमा कराते हो? फिर तो किसी बनिया को दे दो, किसी बिल्डर को दे दो, तो 3-4 रुपए सैकड़े भी दे देगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, किसी दिन भी दिवाला उठेगा। लोग 3 रुपए सैकड़े का ब्याज नहीं लेकर 1 रुपए सैकड़े में बैंक में तो इसलिए जमा कराते हैं कि हमारे को ध्यान नहीं रखना पड़े। यदि आपको ध्यान नहीं रहे तो 6% ब्याज जमा करेंगे, और आप 4 साल तक नहीं करें तो ये साल भर में जमा ही नहीं करेंगे, फिर ब्याज पे ब्याज नहीं देंगे, क्यों? तो सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। पर हम भूल गए तो बनिए के यहां जमा करा गए और तुम भूल गए तो जमा नहीं करेगा, क्या भी कर देगा, पूरे के पूरे खा जाएगा। अब तुम बनियों की बात करते हो, मैं किसी की बात नहीं करना चाहता हूं, कि मैं भूल से तुम्हारे पास 2,00,000 रुपया छोड़ दूं और मैं भूल जाऊं तो तुम कभी कहने ही वाले नहीं हो कि पंडित जी आपके रुपया रखे भूले, तो मैं कहूं भाई मेरे भूले? हाँ हाँ, थे। तो आपको पता था कि हाँ, तो फिर आपने मेरे से कही क्यों नहीं? हाँ, मैं कहने वाला तो था लेकिन जरा भूल गया, क्यों आ बैल मुझे मार क्यों? यदि ये भूल ही गया है पूरे पद जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? और कुछ तो इतना ईमानदार है, क्या नाम सुमन भाई, क्या मैं 3 साल से क्यों नहीं मांगे? अब हम नहीं दे सकते हैं। तो तुम्हारे पास कहां थे? रखे ना रखे थे, तो तुमने क्यों नहीं कहा? हम क्यों कहते नहीं मांगे खाना, अब हमारे पास नहीं हो गए थे, तो तुमने खर्च क्यों कर दिए? तुमने क्यों नहीं मांगे थे? हम और तुम में है ऐसे, तो भूल की तेरे को पता था तो तुझे भूल बताना चाहिए थी ना, क्या बोलिए? किससे कहें, क्या कहें आश्चर्य? बैंक में इसलिए तो करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया से वो सब होते जाएंगे निश्चिंत। तो ऐसी तेरे को निश्चिंता ही हो तो तू, मतलब अपन बोलते हैं ना कि तो हमको माथे पर कोई बोझा नहीं रखना, इसलिए जो भी हमारे पास पूंजी है बैंक में जमा करा दी और महीने के महीने जो ब्याज आएगा आएंगे, खाएंगे और आराम से आत्मा का भजन करेंगे, क्यों? क्यों करते कि नहीं करते? लेकिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे को 3 रुपए सैकड़े देते, उनके यहां जमा करा दो ना। क्यों? तब बाप बाप रह गया क्या? बेटा बेटा रह गया क्या? भाई भाई रह गया क्या? किसके यहां जमा करा दें? ऐसे ऐसे केस रोजाना आते हैं सामने, देखने में आंख में आंसू आता है। एक बुढ़ी अम्मा मेरे पास आई, फिर सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करा दी, बेटी ने लिखा दी, अब उसे 2 रोटियों की व्यवस्था नहीं है, फिर कमरा खाना खाली नहीं। ठीक है, अभी तो बेटे नालायक सुने थे, तो बेटियां भी नालायक होने लगी। क्या संसार रहने लायक, किसी बात करने लायक ऐसे लगता ही नहीं। कोई कोई आदमी बात करने लायक ही नहीं है, किसका भरोसा करे? अभी कम से कम अंग्रेजों के स्थापित किए बैंक इस भरोसे लायक है। क्यों? इसलिए बेटा बाजार से 2 रुपए 3 रुपए सैकड़े के ब्याज से लेता है और बाप अपने पैसा बैंक में जमा कराता है, इसीलिए तो कराता है। क्यों? बाप के 5 लाख बैंक में जमा है रुपया सैकड़ा पर, और बेटा 5 लाख बाजार से 3 रुपए सैकड़े पर लेना पड़ता है। ये हमने ये उपलब्धि की है क्योंकि हमारी आचरण ऐसा हो जाएगा तो हमें यही होने वाला है ना। क्यों अमृत भाई? पंडित जी, तुम कहां बेटे बाप की बात करते हो? अभी तो इस हाथ का, इस हाथ को भरोसा है क्या? तो वे कहते क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे के बिना भरोसेदायक कोई क्रमबद्ध पर्याय ही है। तेरी दृष्टि स्वभाव के सन्मुख आएगी ही नहीं। तूने यदि बाजार में बांट दिया ब्याज से रुपया तो 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा और साल में 10-15 हजार रुपया बच्चे खाते मारना पड़ेगा। क्यों? और बैंक में दे दिया तो 1 सेकंड रुपये को वहां नहीं लगाए तो भी 1 पैसा तेरा मारा जाने वाला नहीं है। तो यही फर्क है ना। क्यों? तो तूने यदि पर्यायों का बोझ अपने माथे रखा कि मैं बदल के करूंगा तो 1 सेकंड तेरे को फुर्सत नहीं मिलने वाली है। क्यों? तेरी मन की पर्याय होना चाहिए, होनी नहीं है तो तू लगा रहेगा। तो कहते एक विकल्पात्मक ज्ञान में एक पक्का निर्णय हुए बिना कौन सा? पर्याय समय तो होगी ही, जो होनी है वो ही होगी, उसमें बेईमानी संभव है ही नहीं है। ये दृष्टि स्वभाव के सन्मुख आ ही नहीं सकती है। देखो गुरुदेव की भाषा देखो कितनी जोरदार है। देखो फिर पढ़ता हूं प्रश्न। अभी आपने फरमाया कि कर्मबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होगा, त्रिकाली गायक स्वभाव पर दृष्टि रखने से होगा, तो फिर कर्मबद्ध पर्याय के निर्णय की जरूरत ही क्या है? बस हम तो गायक स्वभाव का आश्रय ले लेना, ले सकते हो तो ले लो ना, कौन मना करता है। पर विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर से दृष्टि हटती कहाँ है? और गायक स्वभाव पर दृष्टि जाए बिना क्रमबद्ध पर्याय का भी सच्चा निर्णय नहीं होता है, तथा गायक स्वभाव पर दृष्टि जाने पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो ही जाता है। अतः क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय नहीं करने की बात कहां रही? गायक स्वभाव पर दृष्टि जाने के पहले आगम व युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक निर्णय तो हो सकता है, सच्चा नहीं, पर विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है। उसके बिना पर्याय की महिमा हटती ही नहीं, पर्याय से दृष्टि हटती ही नहीं। देखो अपन ने जो सुबह के व्याख्यान में आगम के आधार पर आत्मा के अनुभव की बात करी ना, उसमें इसमें कितनी साम्यता है बोलो दिनेश भाई? यही तो मैंने 25 बार पहले लिखी किताब, इसमें ये बात आई कि नहीं आई सुमन भाई? मैंने हमारा तो निर्णय 25 साल से एक ही है, इसमें फर्क नहीं है। कौन सा निर्णय? कि पहले विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय होगा, सच्चा और पक्का निर्णय होगा, और उसमें श्रद्धा का इतना गहरा परिपाक होगा जिसे हम प्रायोगिकलब्धि कहते हैं, तब जाके दृष्टि स्वभाव के सन्मुख होकर आत्मानुभूति होगी। तो बुद्धि पूर्वक करने लायक तो यही पुरुषार्थ है। तो समझे ताते हैं जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, लिखा क्या नहीं लिखा दलत राम जी ने? देखो तत्व विचार की महिमा, कर्मादित का सर्वसम भी इसी से होगा, उसमें तेरे को कुछ नहीं करना है। तो बुद्धिपूर्वक ये कर, और निर्विकल्प की अनुभूति विकल्प से निर्विकल्प में कैसे जाएंगे? तो तू तो यही करता रहे, इसमें से ही वो विकल्प में से निर्विकल्प में चला जाएगा। उसके तो मैं विकल्प तोड़ूं अब निर्विकल्प में जाऊं, ऐसे विकल्प से कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या साहब, क्या आप तो आप तो सोने का प्रयत्न करो डॉक्टर साहब, आप लोग बोलते हैं तो क्या सोने का प्रयत्न करें? कि नींद आ जाइए नींद आ जाइए नींद आ जाइए, ऐसे विकल्प से नींद आती है, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही, ऐसे विकल्प से नींद आ रही। तो क्या प्रयत्न करें कि तुम ये विकल्प ही तोड़ दोगे, तुम्हें नींद आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हें क्या करना है नींद का, खाना है चबाना है उसे, अरे शरीर थकेगा उसे आराम करना होगा तो आ जाएगी, आना होगी तो आ जाएगी, नहीं आना होगी तो तेरे को क्या लेना देना, तू क्यों बुलाना और क्यों नहीं बुलाना, क्यों? तो फिर हम क्या करें, हमें नींद नहीं आए तो क्या करें, कि नींद की गोली खा लो, कि नींद नहीं आए तो क्या करें, कि नींद का कुछ नहीं करो और तुम भगवान आत्मा का चिंतन करो, तत्व का चिंतन करो कि जब आना होगी आएगी, एक समय पहले नहीं आएगी, एक समय बाद नहीं आएगी, तो नींद का क्या होगा, जब तुम चिंतन करके तो देखो क्यों। अटल जी, नींद की गोली खाने की क्या जरूरत है, किसी विद्वान का प्रश्न सुनने बैठ जाओ आ जाएगी। कोई सास पर में बैठ जाओ आ जाएगी, नहीं आती एक गोली के कम असर कारक है। नाराज मत होना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि रात भर सोए हैं, नींद की गोली लेकर शिकायत भी नहीं कि रात को नींद नहीं आई, और सुबह प्रयत्न में आए और उन्हें नींद आते मैंने देखा है, और प्रयत्न खत्म हुआ और नींद ऐसी उड़ती ऐसी जागृति देखी है कि ऐसी कहीं जागृति नहीं देखी है। शाम को प्रयत्न में नींद आएगी और फिर रात के 2 बजे तक जाएंगे। अपना अपना तो तोड़ लेना, दूसरे का मत देखना, अपने से ही पता लग जाएगा। नींद का तेरे को क्या, नींद के लिए कुछ नहीं करना है, समझ गए ना, तो तेरे को अनिर्विकल्प अनुभूति में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ करने वाला धर्म नहीं है। 3-4 ऐसे करते कि नहीं करते, जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो, मैं 1-2-3-4 जोर जोर से बोलता था, तो और जोर से बोलो 1-2-1-2-3-4 तो आओ फिर कहते हैं जोर से बोलो, तो फिर चलो ऐसा, इसे मेरे को सब याद है अभी। अब वो बोलना कब बंद हो गया मुझे पता नहीं है, वो ये नहीं कहते थे कि तुम बेहोश हो और बोलना बंद करो, वो तो ये कहते थे क्या कि तुम बोलो और तुम बेहोश हो गए होश में, और पूछने की क्या जरूरत है, जब बोलना बंद हो जाएगा तो अपन समझ में आ जाएगा बेहोश हो गया। तो बेहोश होने का जो तरीका है वो ही आत्मा के अनुभव में जाने का तरीका, तो विकल्प कह करके आत्मा में जाना चाहता, आत्मा में जाने की विधि तो विकल्पों का मंद होना है, विकल्पों का छीन से छीनतर हो जाना है, क्यों? और तू तो अंतिम समय तक निर्विकल्प में जाने का प्रयत्न करते रहना चाहता है, क्यों? तो प्रयत्न का अभाव निर्विकल्प में जाने का है, दृष्टि के स्वभाव में सन्मुख होने का। देखो अभी पन पढ़ रहे थे कहां तीन नंबर है ना, देखो सर, पर विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पर्याय की महिमा हटती ही नहीं, पर्याय की महिमा बनी रहती है, पर्याय पर से दृष्टि हटती ही नहीं। तो इसका मतलब तो यह हुआ, देखो कि पहले आगम और युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, पहले निर्णय हुए देखो, फिर जब हमारी दृष्टि पर्याय से हटकर गायक स्वभाव पर जाएगी, स्थिर होगी, तब क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी। उत्तर, हाँ भाई बात तो ऐसी ही है। प्रश्न, आगम के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, यह बात तो ठीक, पर लोगों का तो यह कहना है कि शास्त्र में तो कहीं क्रमबद्ध पर्याय आई ही नहीं है, यह तो आपने ही नई निकाली है। गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं, फिर वो अलग है कि शास्त्रों में आई है, वो शास्त्रों के आगम के आधार दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात हो गई ना, तो पहले शास्त्रों के आधार से हमको सब पर्यायें क्रमबद्ध ही होती हैं, एक समय भी आगे पीछे करना संभव नहीं है, एक पर्याय को हटाकर दूसरी पर्याय को लाना संभव नहीं है, ये निर्णय हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में आगम के आधार पर गुरु की वाणी के आधार पर और युक्तियों के आधार पर होना चाहिए। अपन ने आदम के प्रमाण भी दिए, युक्तियां भी दी, तर्क भी साथ साथ में प्रस्तुत किए, है ना, और ये बताया कि हमारे गुरुओं की वाणी भी यही है। अब बाकी जो क्रमबद्ध पर्याय की जो विकल्पात्मक श्रद्धा हो जाएगी ना, तो इस सच्ची श्रद्धा कब होगी? जब आत्मा का अनुभव होगी तब। उसके पहले सच्ची श्रद्धा होगी नहीं क्रमबद्ध की, क्योंकि उन्होंने लगा क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना है। अब देखो ये तो एक आदमी को अपन ने कहा, वो हाथ में सांप को पकड़े था, तो देख लो तेरे जो हाथ में है ना वो सांप है। अच्छा सांप है, इसे सांप कहते हैं, यहां जो सांप कहते हैं, तो ये बहुत जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है, यहां बहुत जहरीला होता है, ये यदि डंक मार दे तो गारंटी से आदमी बचेगा नहीं, मर जाएगा। अच्छा मर जाएगा, गारंटी से मर जाएगा, और ऐसा अपने लिए रहे तो आज उसी समझ में आ गई अपने जो कही। बोलो अहमद भाई समझ में आ गई? यहां आ गई, आपको तो मैं पाठ सुना सकता हूं कि ये सांप है, यदि ये डंक मार दे ना तो आदमी बचेगा ही नहीं, ये मेरी समझ में आ गई। कुछ समझ में सुनिए, तुम्हारा पाठ भी सुना दिया मैंने, हूबहू शब्दों को रिपीट कर दिया, और तुम कहते समझ में नहीं आई। कहते समझ में आई तो तुम माने कि जिस समझ में आते ही वो तेरा हाथ ढीला पड़ जाना चाहिए और हाथ से सांप छूट जाना चाहिए, तो हम मानेंगे कि तेरी समझ में आई। और जब तक तू कितना ही रट के सुनाए हम मानेंगे ही नहीं कि तेरी समझ में ये बात आई है। सही है, इतना जहरीली है, काट खा देगा फिर भी तू उससे खेलता रहे और कह मेरी को समझ में आ गई, हम इसको समझ में आना नहीं मानते। तो वो कहते क्रमबद्ध पर्याय मेरी समझ में आ गई, मैं तो बहुत दिनों से क्रमबद्ध पर्याय को मानता हूं, 25 सालों का मुझे क्रमबद्ध पर्याय को मानते हुए और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कैसे मानता है? ये तो कहते एक समय का भी अंतर नहीं होता है, सच्ची क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होगी तो दृष्टि उसी समय स्वभाव के सन्मुख होती है पर से हटकर, और तेरी स्वभाव के सन्मुख नहीं हुई तो तेरे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा। और भी कहता हूं कि दो बच्चे शतरंज खेल रहे थे, सुने होंगे आपने मेरे से कई दफे बात, शतरंज खेल रहे थे, इतने में एक आदमी ने कहा आगे रमेश तेरी मां मर गई है। क्या कहा? तेरी मां मर गई है। तो ठीक है चल चल, तो तू सुनता नहीं है तो सुन लिया ना, क्यों माथा खाता है, चल अपने वजीर को बता कि मैं ये कहता हूं कि तेरी मां मर गई है, कि वजीर क्यों नहीं बताता, सुन लिया ना, कहां सुना, कि तू ये कह रहा है कि मेरी मां मर गई है, बोल अब तो सुना कि नहीं सुना, दे रहा हूं क्या, अब बता अपना वजीर, बोलो उसने सुना कि नहीं सुना, क्यों सुना विनय बाबू के नहीं सुना तो है, लेकिन लगता है कि वो या तो मां शब्द का अर्थ नहीं जानता है या मर गई शब्द का अर्थ नहीं जानता है, क्योंकि अन्यथा वो खेलता नहीं रह सकता था। क्यों कहता मैं बेवकूफ समझते हो, मां नहीं जानता हूं मैं, अरे मां माने मदर, और मर गई नहीं जानता हूं, डेथ हो गई है, अब खेल अपना बता बता जल्दी वजीर, जानता है वो, अरे ये तो तूने दूसरे शब्द बोल दिए हैं, उसका भाव तेरे को भाषण नहीं हुआ है, यदि तू दोनों शब्दों का अर्थ सही भी समझता है तो उन दोनों का संबंध नहीं जोड़ पा रहा है, तो क्या हुआ है, क्योंकि यदि वो सही भाव ख्याल में आए तो शतरंज का खेल चालू नहीं रह सकता है। क्या करें हम, कैसे करें, कैसे बताएं तुम्हें कि हमारी समझ में नहीं आया, कि हम तो तब मानेंगे जब तेरा खेल बंद होगा। अच्छा तू हार रहा है इसलिए ना, तो मामला क्या है महीपाल जी, तो वो बच्चा जो है ना उसकी अम्मा जब वो नहीं मानता था ना कई दफे कहना कि तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं मर जाऊंगी, बहुत धमकी देती थी, और जब वो नहीं मानता था तो आंखें बंद करके ऐसी, फिर बेचारा घबराता था, मां 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 नहीं उठती कमरे के उठने की तो रोने लगता था, तो फिर वो हंसते हुए आंखें खोल के उठ जाती थी। तो वो समझता था कि ऐसे मरा जाता है। वो मरने शब्द का अर्थ ये उसके दिमाग में बैठ गया कि जब माँ का कहना नहीं मानो तो माँ आंखें बंद करके लेट जाए और अपन से नहीं बोले, इसको बोलते हैं मर जाना। और फिर मनाओ रोने लग जाओ तो माँ आंखें खोल ले, उसको बोलते थे जीना। क्यों? तो वो समझा कि आज भी अम्मा ऐसी ही मर गई होगी। कैसी? कि आंखें बंद करके लेट गई होगी, इसलिए वो कहता चुप रहे, मर गई तो मर जाने दे, तुम अपना वजीर बता। हम कह रहे कि वो सही अर्थ समझता है, माँ का अर्थ भी समझता है, मर जाने का अर्थ भी समझता है, उनका संबंध भी जोड़ लिया है कि मेरी माँ मर गई है, लेकिन फिर वो छोड़ता क्यों नहीं है ना। तो ऐसी हमारी दृष्टि के हमने क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जिस समय जो जैसी होनी है वो उस द्रव्य की वही पर्याय उस समय वैसी ही होगी, पांचों संवाद मिलके ही होगी, ये साफ भाषा ऐसी बोलता है। और फिर भी दृष्टि स्वभाव के सन्मुख नहीं हुई है तो कहीं ऐसी ही कोई गलती है जैसी वो बच्चा मरने का अर्थ माँ का रूठ करके आंखें बंद करके पांच मिनट को लेट जाना है, ऐसा ही कोई अर्थ समझता है इनमें से कहीं ना कहीं, समझ रहे ना। तो सारी जिंदगी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करता रहता है और क्रमबद्ध पर की श्रद्धा से होने वाला जो आत्मानुभव का लाभ है उसको प्राप्त नहीं होता। कहां खड़े हो शांतिलाल जी, समझ लेना, बस अपना अपना देखो लेना। नहीं हुआ है ना वो काम तो कहीं ना कहीं गलती तो अवश्य है। एक कटु सत्य आपके सामने रखता हूं, देते तो मानना, नहीं देते तो मेरा मुझे वापस कर देना। कि सब हम जो समझते हमारी समझ में कोई गलती तो है नहीं, आपकी समझ में गलती होगी, हमारी समझ में तो कोई गलती नहीं है, हमने तो बहुत सब अच्छी तरह से देख लिया है, नहीं है क्या? तो आपको सम्मत सुन तो हो गई साहब, वो तो कहां है, नहीं है पक्का, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है, हाँ ये तो पक्की बात है, सम्मत दर्शन नहीं है। तो तेरी समझ में भी गलती नहीं है और सम्मत दर्शन भी नहीं है, दो बातें एक साथ हो सकती हैं। तेरी विकल्पात्मक ज्ञान की समझ पूरी तरह सही हो जाए और फिर बरसों तक सम्मत दर्शन नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब गारंटी से कहीं ना कहीं गलती तो है। दिक्कत यह है कि गलती माने तो गलती सोधे तो निकले, अरे माने गलती तो है ही नहीं, तो समझ रहे क्या काल जिन्हें आई नहीं हुआ तो यही तो गलती है क्या? तो तुम्हें तो समझाया था कालब्धि आवे ना करो रुपए करो तो नहीं होगा, लेकिन जिसकी कालब्धि नहीं आती है उसके तत्व का निर्णय भी सही नहीं होता है, उसके पांचों ही संभव नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि तेरे तत्व के निर्णय में भी कहीं ना कहीं भूल तो है और है। क्या ख्याल में शरीर में कोई बीमारी हो, हमें बराबर से दर्द बना रहता हो, तो 50 हम जांचें कराएं और पता ना भी चले क्यों, तो भी हम तपास कराना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि सिर दर्द तो चालू है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्यों? तुमने कह दिया कि सारी जांचों में कहीं कोई खराबी नहीं है, डॉक्टर के एक कह देने से कि कहीं कोई खराबी नहीं है अपन मान लेते हैं, क्योंकि खराबी नहीं है तो दर्द नहीं होना चाहिए। एक खराबी तेरी पकड़ में नहीं आ रही है ये बात अलग है, लेकिन खराबी है ना, तो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख नहीं हो रही है तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में कहीं ना कहीं गड़बड़, उसका सही भाव तेरे ख्याल में नहीं है। या तो तेरे को काल का ये कांत है, या पुरुषार्थ का ये कांत है, या निमित्त का ये कांत है, कोई ना कोई एकांत उसमें है, जैसा बैलेंस वो होना चाहिए वो वैसा तेरे दिमाग में। क्यों साहब? क्यों साहब, आप तो इतना प्रयत्न करते हो और फिर भी लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है? तारातुंगी आना चाहिए ना। कि मैं पूछता हूं कि पांच संभाग के नाम आपको याद है? पांच संभाग के नाम याद है? तो उसमें एक संभाग है निमित्त और बाकी चार संभाग है उपादान। समझ में आया कि नहीं आया? कौन? जो स्वभाव उपादान है, काल लब्धि उपादान है, फिर निमित्त जो निमित्त है, फिर होनहार उपादान है, फिर पुरुषार्थ उपादान है। तो चार संभाग तो है उपादान, और एक है निमित्त, तो आपकी समझ में क्रमबद्ध पर्याय आए उसमें मैं तो एक निमित्त हूं, बाकी चार कान तो आपके आप में विद्यमान है, तो आपकी समझ में नहीं आ रही तो मेरी कोई कमी है कि आपकी भी कोई कमी हो सकती है? मैंने एक व्याख्यान दिया, 1000 आदमी यहां सुन रहे हैं, और एक आदमी की समझ में आ गई, सुमन भाई की समझ में आ गई, तो जो 999 की समझ में नहीं आई उसमें कौन कारण है बोलो? क्योंकि यदि निमित्त में खराबी होती तो एक की भी समझ में नहीं आती, उसका तो निमित्त सही बैठ गया, जिसके चार उपादान तैयार थे उसके निमित्त सही बैठ गया, तो इन चार उपादान में कहीं कमी है इसलिए समझ में नहीं आ रही। हमारी क्या जाने, तुम तो केवल ही आगर रहेगा कोरो उनमें से है ना, हम तो समोसण में से लौट गया, उनमें तो निमित्त में कोई कमी नहीं थी। क्यों तो किसी जीव के क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध पर्याय समझने का काल ही नहीं पका है तो उसमें हमारा उपदेश क्या करे, कितना ही बढ़िया दे होने वाला क्या है बोलो? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय समझने के लिए उसकी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध पर्याय समझने की काल लब्धि आना चाहिए, पर्यायगत योग्यता होनी चाहिए, उसकी होनहार होना चाहिए, उसको हर अंतर्भूत के भीतर सम्मादर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ उसके अंदर प्रकट होना चाहिए कि पांच फैक्टर मिलेंगे तब क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी। कोई एक निमित्त के फैक्टर से क्रमबद्ध पर्याय समझ में क्यों? हिंदी तो बच गई है लेकिन अंतिम बात क्या के समाप्त करूंगा, क्रमबद्ध पर्याय समझ में आना कहो तो दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना कहो तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति होना कहो, सब एक ही बात है। शास्त्र में एक बात कह के 6 महीना और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं और 608 जीव मोक्ष जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 608 जीव को सम्मा दर्शन होता होगा, उसी क्रम में चढ़े हैं ना, एक साथ सम्मा दृष्टि करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन 6 महीना 8 समय उत्पत्ति तो उतनी ही होगी ना, तो ठीक है ना, एक इतनी ही होगी। और कम से कम 20 तीर्थंकरों की वाणी, रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट, 5 विदेश क्षेत्रों में खेल रही क्या नहीं खेल रही, तो तीर्थंकर की वाणी ऐसा जबरदस्त निमित्त तो अपनी वाणी है नहीं, तो 6 महीना और 6-8 समय में 608 जीवों का बहुत बड़ा कोटा तो वहीं खत्म हो जाता। ऐसे पात्र जीव वहां होंगे ना, क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी तो निरर्थक नहीं जाएगी ना, बोलो अगला जी साहब समझ में आई कि नहीं? बहुत बड़ा कोटा तो वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आचार्य गंधर देव, एक तीर्थंकर के कितने कितने गंधर हैं, फिर आचार्य भगवंत, फिर उपाध्याय, फिर मुनिराज, क्यों, फिर अनुवृत्ति, यानी सीनियर लोगों की कितनी लंबी लेन है उपदेशकों की, क्यों? तो आप समझ लो कि हमारे और तुम्हारे कोटा में क्या नंबर आएगा, कल्पना कर लो। इसे क्यों कि किसी की समझ में नहीं तो कौन सा आश्चर्य हो गया, क्योंकि उनकी पात्रता पके ऐसे जीव ही यहां कम है, तो हम क्या करें उसके लिए, समझ में आया कि नहीं? और इस तरह से एक बात और समझ में आती है कि तुम सारे 608 का कोटा अपने एरिया में ही, अपने गांव में ही पूरा कर लोगे तो बाकी बिताए तीर्थंकरों का क्या होगा? 608 तो होते ही ना, अभी तो मैंने 3500 की घोषणा करी है, अभी तो 108 और बाकी है, यही कर देगा सब पूरे पूरे कोटा। तो देवेंद्र कुमार जी मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? वो रेयर पने का भी तो विचार कर। क्यों? अरे सारे जीवन में इतने परिकर में कुछ लोग ही पक जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, समझना कि भरत क्षेत्र में भी मुक्ति का मार्ग चालू है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।